ततः तस्मात् बिलापादे पश्चादिति क्षणम निश्चिष्टतया निपत्य। कहते इसके बाद, किसके बाद? बिलापादे पश्चात, बिलाप आदि के पश्चात क्षणम निश्चिष्टतया निपत्य वृत्ता नाम तासामत कथंचित धैर्यतः किंचित स्वस्थ स्वस्थतायाम सत्यामित्य अर्थ। ततः का अर्थ है कि बहुत बहुत बिलाप करके मूर्छित होकर के गोपियां गिर गई थीं और कुछ देर के बाद कुछ धैर्य हुआ उन्हें तो स्वस्थ जैसी हुई। तब कृष्ण संदेश ही, अब कृष्ण के संदेश से वे विगत विरह ज्वर हुई कुछ देर के लिए। यह जो पहले उद्धव जी सुना चुके हैं उसके अलावा कृष्ण संदेश दूसरा दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी की भाषा को समझते हुए चलिए। पहला संदेश देने से इनका विरह ज्वर कम नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रसन्न हुई अपने सखियों की बात सुनकर। लेकिन अब जब देखा उद्धव जी ने कि इनकी दशा और अधिक दुखी होती जा रही है तो कृष्ण संदेश दिए। यहाँ कृष्ण संदेश का अर्थ बहुत गोपनीय संदेश था जिसे श्री कृष्ण ने इनको जवानी बताया था कि ये बात कहना समझाने के लिए। तो अब फिर कृष्ण संदेश देना, संदेश ही बहुवचन का प्रयोग किया गया। कृष्णस्य परमाकर्षकस्य संदेश ही, ये कृष्ण संदेशा पूर्व संदेश भ्यो भिन्न, पहले के संदेशों से ये संदेश भिन्न है। तई इति अन्वय, इन संदेशों से व्यपेत विरह ज्वरा। ते च संदेशा श्री सुखेन अविवृत्य अपि फलतो गेया जथा। क्या संदेश दिया उद्धव जी ने, कृष्ण का क्या संदेश दिया, इसको सुखदेव गोस्वामी विवृत करके क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्या संदेश दिया है, कहा नहीं गया है? तो इसका इसका अर्थ यह है, प्रेसीगण मत प्रेषितस्य उद्धवस्य अग्रे जुष्माभि चक्षुषी मुद्रितव्यानि। मैं उद्धव को भेजा हूँ, उद्धव के सामने तुम सब एक बार आंख बंद करो। ततश्च पूर्वम यथा गोप बालकास चक्षुर मुद्रणेन मुंजाटवी दवानलात उद्धृता। जैसे मैं पहले मुंजाटवी में जब दवानल लगा था, आग लगी थी, तो मैं कहा था गोप बालकों से कि आंख बंद करो, तो उन लोगों ने आंख बंद किया तो मैं अपनी योग शक्ति से उस आग को खत्म कर दिया। तो उसी तरह से तुम लोग आंख बंद करो और मैं अपनी योग शक्ति से तुम्हारे विरह दवानल को खत्म कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। पश्यता में योग बलमित, ये संदेश था, आंख बंद करो। संदेश श्रवणे न ता जदैव चक्षुंसी मुद्रया मासु। संदेश सुन करके जब गोपियों ने अपनी आंखें बंद की तत्क्षण मध्य व सतकोटि वर्ष समय, उसी समय सतकोटि वर्ष का समय योग माया प्रवेश तत्र ताभि सह रास वृंदावन विहार द्युत मधुपान जल विहार हिंदोल नादि विलासान अन्य लक्षितान कृष्ण तावत चक्रे जावत भी सा विरह पीड़ा सम्यगेव विस्मृता भवे। तो गोपियों ने जब आंख बंद किया तो उसी समय योग माया ने अप्रकट नित्य वृंदावन को प्रकट कर दिए गोपियों के सामने, और वे देखती हैं कि हम कृष्ण के साथ नाच रही हैं, जल विहार कर रही हैं और रास लीला कर रही हैं, झूलन झूल रही हैं, हिंदोलन झूलन झूल रही हैं। और तब तक ये दृश्य चलता रहा जब तक उनकी विरह पीड़ा दूर नहीं हो गई, ये संदेश है। ततश्च तासाम अंगानि आनंद प्रमुदितानि अलक्ष्य मुहूर्तांतरे। जब उद्धव जी देखते हैं तो मूर्छित गिरी थी, आंखें बंद की थी और शरीर पर आनंद का पुलक आ रहा था और चेहरे पर मुस्कान आ रही थी उस नित्य लीला में भाग लेकर के, उसको देख करके, तब फिर उद्धव जी कहे भो स्वामिन्या, हे हमारी स्वामिनियो, सांप्रतम चक्षुंसी उन्मीलयत, अब आंख खोलो। इति उद्धवेन उक्ते सति, इस प्रकार उद्धव के कहने पर ताह चक्षुंसी उन्मील्य आंखें खोल करके अधोक्षजम अधः कृतेभ्यो अक्षिभ्यो निमीलितेभ्यो नेत्रेभ्यो पर सहस्रानंद प्राप्त पुनर्जातम एवं आत्मानम स्वम ज्ञात्वा पूज्यम चक्र। जब उन लोगों ने आंखें खोला तो अधः अक्षजम आंखों की वृत्ति को नीचे कर लिया। उस समय उनकी आंखें नीची थी। अधः कृतेभ्यो अक्षिभ्यो निमीलितेभ्यो नेत्रेभ्यो, तो नीचे की हुई मुंदी हुई आंखों से हजारों हजारों गुना आनंद मत कोटि कोटि आनंद प्राप्त कर रही थी। अपने को ऐसा मान रहे थे कि हम परम आनंद में हैं, आत्मानम एवं ज्ञात्वा, अपने को ऐसा जानकर उद्धव का सत्कार करने लगे, उद्धव की बड़ाई करने लगे। और भो प्रेम वत्य यदि जुयम प्राणस्त्यक्तुम यह, तो संदेश क्या दिया? अब बाहरी संदेश दे रहे हैं क्योंकि संदेश ही बहुवचन में है। एक संदेश तो दिया कि आंख बंद करो और मेरा जोग बल देखो, तो उसमें अप्रकट वृंदावन को दिखाया भगवान ने और गोपियों का विरह ज्वर उससे कम हो गया। और जब बाह्य वृत्ति हुई तब फिर दूसरा संदेश दे रहे हैं उद्धव जी, बताए भो प्रेमवत्य हे हमारी प्रेमवती गोपिकाओं, यदि जुयम प्राणस त्यक्तुम हद्रे तरी जुष्म दशाम श्रुतवा अहम अपि प्राणन त्यक्ष्यामि, यदि तुम लोग प्राण त्याग दोगे तो ये सुन करके मैं भी प्राण त्याग दूंगा। नात्र संदेह है, इसमें संदेह नहीं है। शपथ सहस्रम कुर्बन अहम ब्रवीमि, मैं सहस्रों सौगंध खाकर कहता हूँ कि जिस दिन सुनूंगा कि तुमने शरीर छोड़ दिया तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि यूयम में वो प्राण भवत, तुम ही मेरा प्राण हो। ब्रजम गंतुम प्रतिक्षण जतमानो अपि, यद्यपि मैं ब्रज में प्रत्येक क्षण आने की चेष्टा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अपि अहम जल न सकनो में, फिर भी मैं ब्रज में नहीं आ पा रहा हूँ। तत्रायम काल एवं कर्म एवं या विख्यात लक्षण प्रिया प्रिय, उसमें काल कर्म है, काल और कर्म के अधीन है जीव, इसके कारण मैं नहीं आ रहा हूँ। प्रेमई व प्रतिबंध कहते हम संके, पता नहीं प्रेम ही प्रतिबंध कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं चेष्टा कर रहा हूँ लेकिन यहाँ के लोग आने नहीं दे रहे। इतम प्रकार का ही संदेश है, इस प्रकार के बहुत बहुत संदेश दिए। एक संदेश से दुख नहीं जा रहा था तो बारंबार अनेक संदेश भगवान ने भेजा है तो उसको सुना रहे। तब व्यपेत विरह ज्वरा, व्यपेत व्यपेत का अर्थ है विजुक्त, विरह ज्वर, विरह का ज्वर दुख विजुक्त हुआ। स्वेशु तत् प्रेम भाव निश्चय लक्षण संतापो या संता, यहाँ विरह ज्वर का क्या अर्थ है? विरह ज्वर का अर्थ है विरह की पीड़ा। विरह से क्या पीड़ा थी? कि प्रियतम हमें छोड़ दिए, अब नहीं आएंगे ब्रज में, हमारी शुद्धि नहीं लेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, यही सबसे बड़ा ज्वर था, ताप था। तो अब भगवान के कृष्ण के प्रिय के संदेश से वह ताप चला गया, विश्वास हो गया कि प्रिय आएंगे, किसी कार्य विशेष में उलझ गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं, आएंगे जरूर, अभी भी हमसे प्रेम करते हैं, इस प्रकार का भाव आते ही विरह ताप समित हो गया। तो आत्मानम अधोक्षजम मत्वा श्री कृष्णम अधोक्षजम ज्ञात्वा तम च स्वात्मानम ज्ञात्वा न तु अन्यम। आत्मानम अधोक्षजम ज्ञात्वा, इस शब्द का प्रयोग अद्भुत तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने किया है। अपने को अधोक्षज जानकर, यह अर्थ नहीं होगा श्री कृष्ण को अधोक्षज जानकर और अधोक्षज को आत्मानम मत्वा न तु अन्यम, अपना स्वरूप मतलब परम प्रिय मानकर, कि वह अधोक्षजम इंद्रिया गोचरम अपि भगवंतम, इंद्रिय से अगोचर भगवान को भी आत्मानम अपना परम प्रियम, कि वह सकटाक्षाधो महासंकटात पुनर्जातम यो ब्रजे नंदनम, आत्मानमुक्त प्रकारेण सदा सर्वथा सद्व्याप्तम ज्ञात्वा, अथवा जो सकट के नीचे महासंकट से बचे थे वो है अधोक्षज। अध अक्षज सकट के नीचे थे, अक्षज उसको भी कहते हैं सकट को, तो सकट के नीचे रहकर महासंकट से जो बच गए थे उन ब्रजेंद्र नंदन को उक्त प्रकार रहना है, इस प्रकार से सर्वव्यापक जानकर, जैसा उद्धव जी ने उपदेश दिया उसके अनुसार अधोक्षज को आत्मानम परमात्मा के रूप में जानकर, कोई कोई टीकाकार ऐसे कहते हैं कि वह कृष्ण संदेश ही अथवा कृष्ण के संदेशों से अधोक्षजम आत्मानम ज्ञात्वा, अधोक्षज को आत्मा मान करके माने भगवान, किंवा आत्मानम प्रियम अधोक्षजम ब्रजराज कुमारम ज्ञात्वा, अथवा अपने प्रिय को अधोक्षज मानकर, भगवान मानकर या ब्रजराज कुमार मानकर, उद्धवम इस तरह से ज्ञान हुआ शांति हुई तब उद्धव से तादृश संदेश प्रापणादिना, इस प्रकार का प्रिय संवाद जो लाए थे प्रियतम के पास से, इसलिए उद्धव को अथवा साक्षात उत्सव रूपम भागवत प्रवरम पूजयन चक्र, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की, उनका सम्मान किया। तस्य प्रत्यर्थम किंवा तत्श्रवणेन श्रीकृष्णस्य सुखार्थम सुख शांत्यर्थम इत्यर्थ, पूजा किया उद्धव जी की। उद्धव जी का सत्कार करने से उद्धव जी जाकर बताएंगे मथुरा में कि गोपियां बिल्कुल ठीक हैं, सुखी हैं, तो इसे हमारे प्रियतम को सुख मिलेगा, इसलिए अपना दुख निवारण कर लो। सत्कार में क्या कहा चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं, भोह उद्धव साधुक्तम, बहुत अच्छा आपने कहा, अतः परम कष्टेन अपि स्व स्व प्राणान वयम रक्षिष्याम, अब कितना भी कष्ट होगा हम अपने प्राणों को रखेंगे, मरेंगे नहीं। एवं जद इवम संदेश संदेशस्त्वम नाख्या से, यदि आप यह संदेश नहीं लाए होते, नहीं बताए होते, तदा वयम अमरिष्याम इव, तो हम मर ही गई होती। ततश्च सर्वनाशय सर्वनाशय व भविष्य से सर्वनाश होता, अस्मद इष्टा सर्वरक्षा तो या कृता, हम जो चाहते थे आपने किया। इस तरह से उद्धव जी का सम्मान किया। याधोक्षजम श्री कृष्णम आत्मानम परम प्रियम ज्ञात्वा, अधोक्ष श्री कृष्ण को अपना परम प्रिय मानने लगे जान करके। उवास कतिचिन मासान गोपीनां विनुदन सुचः कृष्णलीला कथां गायन रमयामास गोकुलम, ततश्च श्री गोपी प्रमुखा नाम श्री कृष्ण स्फूर्तौ साक्षात्कारत्व प्रतीत्या तन्नित्य लीलाया मानस प्रत्यक्ष में प्रवेशेन मय्यावेश मन कृष्ण इति तदा वास तदा श्वासने च प्राय विच्छिन्न एव शोक इत्याह उवासित। तो उद्धव जी कई महीने तक ब्रज में रहे और इस तरह से श्री कृष्ण की बातें कहते थे, ब्रज लीला भी वो गाते थे, बहुत बड़े गायक थे, और इस तरह से ब्रज की सुनी हुई लीलाओं को भी ऐसा वर्णन करते थे कि लगता था कृष्ण यही हैं। तो गोपी जनों को या किसी भी ब्रजवासी को कृष्ण के मिलन का सुख हो रहा था, विरह की स्फूर्ति बंद हो गई, इसलिए वे यदि रोज जाने को कहते थे कि अब जा रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन उनको लोग जाने नहीं दे रहे थे। इस तरह से कतचिन मासन 10 से 11 महीना बीत गया। यदि वर्ष हुआ होता तो वर्ष कहते, कतचिन मासन का अर्थ है वर्ष से एक आध महीना ही कम, ऐसा 10 से 11 महीना रह गए। गोपी नाम सुचह बिनुदन, गोपियों के दुख को दूर करते हो, दुखानि प्रिय विरह अनुसंधानवती नाम पुनः पुनः उत्थितान शोकान भगवत संदेशा वृत्तिया इति सूचित। भगवान का संदेश लाए ही थे, वो जब जब शोक उमड़ता था विरह बिला तब तब संदेश कह कह करके शांत करते थे। तो गोपी नाम सुचह बिनुदन और कथचिन मासान 10 एकादशवा मासान उवास ब्रजे अवसत एवं तस्य तत्र तत्र वासस्य मुख्य प्रयोजन मुक्त्वा अन्यदप्यः, मुख्य प्रयोजन था गोपियों के शोक को दूर करना, विरह ज्वर को कम करना, इसके साथ ही साथ अन्य उद्देश्य कर रहे। कृष्ण लीला कथा गायन कृष्णस्य माथुरी गोकुल संबंधिनीश्च लीला कथा, कृष्ण की माथुरी लीला या गोकुल संबंधनी लीला, ब्रज में जो लीला किए थे वो और मथुरा में जो किए थे वे सब गायन गाते हुए गोकुलम तज्जन वृंदम, गोकुल में रहने वाले समस्त जीवों को ब्रजवासियों को तत्रत्यान मनुष्य पशु पक्षी वृक्षादि नपी, मनुष्य पशु पक्षी वृक्षादि सबको रमयामास, सुखया मास, सुखी कर दिए। उद्धव जी वास्तव में कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के स्वरूप। कृष्ण लीला गान के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को, पक्षियों को, वृक्षों को, मनुष्यों को, पशुओं को, सबको सुखी कर दिए, दुख दूर हो गया। भगवान कुछ सोच करके तो उद्धव जी को भेजे है ना। इतना दक्ष व्यक्ति, इतना कुशल, जो ब्रजवासियों के शोक को दूर कर दे, जो कृष्ण के दर्शन के बिना किसी प्रकार सुखी नहीं हो सकते थे, उनको रमया मास, रमा दिए मतलब सुखी कर दिए। लीला वर्णन द्वारा कृष्ण का साक्षात्कार कराए, यदि भगवान की लीलाओं का ठीक से वर्णन कर दिया जाए तो उनके मिलन का आनंद प्राप्त होता है। सुखे मास अर्थात तत्त लीला नाम साक्षा दिवस फोरणे न प्रीणितवान। उन्होंने लीलाओं का वर्णन ऐसे किए जैसे लगता था साक्षात तो लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, और उन लीलाओं में, लीलाओं को सुन करके ब्रजवासी ऐसे सोचते थे हम तो उसी लीला में हैं, और इसीलिए उनका दुख दूर हुआ। उपनंद आदि वृद्धेशु तत्पत्न्यादिशु वृद्धासु च कृष्णस्य वंदनादिना। उपनंद महाराज आदि जो थे बड़े बूढ़े, नंद बाबा के भाई और उनकी पत्नियां, और भी जो वृद्ध लोग थे, उन सबके चरणों में वंदना बताया था कृष्ण ने, अथवा उद्धव जी वंदना करते थे। तथा तो श्री दामादि वयस्येषु परिरंभादिना, श्री दामादि को आलिंगन देकर, विज्ञापन आदि देकर, तथा पशु पक्षी वृक्षादिशु प्रत्येकम कुशल प्रश्नादिना, और वृंदावन के ब्रज 84 कोस के प्रत्येक पशु से, प्रत्येक पक्षी से, प्रत्येक वृक्ष से भी समाचार पूछे थे और कृष्ण का संदेश सुनाए थे सबको। बंसी भट्ट को संदेश सुना रहे थे, ऐसे सब सबको संदेश सुनाए, कुशल प्रश्न किए। यथाजथम रमणम गेयम, यथा योग्य रमण जान लेना चाहिए, कैसे वृक्ष को सुखी किए, कैसे पशु को, पक्षी को। गोकुलस्थेषु वृंदावनादि विज्ञापनादि का में वो हरि लीला कथा गान इत्यर्थ, जो कुछ भी करते वंदना करते हुए भगवान की लीला गाते थे। सुखदेव गोस्वामी अब उद्धव जी के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। जावंत्यहानि नंदस्य ब्रजे वासित सबुद्धवः, ब्रजौ कसाम क्षण प्रायाण आसन कृष्णस्य वार्तया सह उद्धवः। प्राक उक्त महात्म्य उद्धवः, जिनकी महिमा का वर्णन मैंने पहले किया है, ऐसा उद्धव। अब समझ में आ गया कि क्यों सुखदेव गोस्वामी इतनी महिमा गाए थे उद्धव जी की, तो इसीलिए कह रहे हैं स उद्धव, वह उद्धव। कौन उद्धव? जिसकी महिमा में पहले गा चुका, वे उद्धव। जावंती अहानी दिन, जितने दिन नंदस्य ब्रजे अवासित, जितने दिनों तक ब्रज में रहे, नंद बाबा के ब्रज में रहे, तो ब्रजौ के शाम ब्रजवासियों के वे सब दिन क्षण प्रायाणी आसन, क्षण भर की तरह बीत गए। आनंद में दिन बीतते देर नहीं लगती है, शोक में दिन बड़े लगते हैं। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, क्यों? कृष्ण से वार्ताया, कृष्ण की वार्ता, कृष्ण से वार्ताया, कृष्ण कथा से या कृष्ण के संदेश से ब्रजवासियों का वह समय, मतलब 10-11 महीना क्षण प्रायाणी आसन, एक क्षण के तुल्य बीत गए इतने महीने। अभी एक भक्त हमसे मिलने के लिए आया, कहा कि महाराज कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला, ये तो बहुत कम समय है। क्षण प्रायाणी में उद्धवे न पुनरेव वा कथ्य मानया लीला कथया, कृष्ण से वार्ताया, चाहे ब्रजवासी कृष्ण की वार्ता सुना रहे होंगे उद्धव जी से, कि यहाँ यह लीला किए, वहाँ वह लीला किए, जैसे आगे वर्णन आएगा, तो 11-12 महीने क्षण भर की तरह बीत गए। एक क्षण बहुत कम देर का होता है। सरिद बन गिरी द्रोणी वीक्षण कुस्मितान्द्रमान, कृष्णम संस्मारयन रे मे हरिदासो ब्रजौ कसाम, सतु तेसाम संगे न श्री वृंदावने परिभ्रमण परम सुखी बभुव इत्या। ये ब्रजवासियों को तो सुखी किए ही, स्वयं सुखी हुए ब्रज में। रमया मास उन लोगों के लिए और रेमे स्वयं के लिए, ये भी रमण के मतलब परम सुखी रहे, रमते रहे। ऐसा नहीं कि ब्रज में दिन किसी तरह बिता रहे थे, यहां रम गए, भूल गए मथुरा को, जबकि वहां के मंत्री थे, प्रधान व्यक्ति थे भगवान के बाद, या ये कहिए उग्रसेन जी के बाद यही थे। लेकिन ऐसा महामंत्री मथुरा से आकर के वृंदावन में भूल गया, बोले एक महीना ब्रजमंडल परिक्रमा चलते है तो कौन बड़ी बात है, 11 महीना बिता दिए और क्षण भर की तरह बिता दिए गा कर। हरिदास हरे है विचित्र प्रसाद आदिना निज मनोहर से श्री भगवत दास। इनको हरिदास क्यों कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हरि हैं, विचित्र वेशभूषा है उनकी, मनोहर हैं, आंखों के लिए परम आकर्षक हैं, तो उनके ही मित्र ये हैं, उनके ही दास हैं, तो उनका दिया हुआ प्रसाद खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं और उनकी सेवा में निष्ठ रहते हैं, तो ये हरिदास हैं। यहाँ हरिदास शब्द यह बता रहा है कि हरि ने जो संवाद दिया था, जो कार्य करने के लिए कहा था, वो उद्धव ने कर दिया। कहा था कि जाओ मेरे माता पिता को सुखी करो, प्रसन्न करो और मेरे विरह पीड़ा को मेरे संदेश द्वारा खत्म करो, तो हरि के संदेश को हरिदास ने पूरा किया। तो सुखदेव गोस्वामी को शायद यह स्मरण आ रहा है कि यही है दास का कर्तव्य, स्वामी की आज्ञा का पालन उद्धव जी ने किया, अतः हरिदास। हरिदास सह सरिद बन गिरी द्रोणी, जमुना जी के कछार पर वृंदावन आदि में और गिरिराज गोवर्धन की द्रोणी आदि में घुमा करते थे, अथवा ब्रजवासी ही इनको ले जाया करते थे, यहाँ कृष्ण वो लीला किया, यहाँ यह लीला किया, वह लीला किया, और वहां वहां जा करके ये लगते थे लीला गाने, सुनने लगते थे। भगवत अनुभावे न अपरता कुस्मित पुष्प युक्तन चंपका दिन वृक्ष, अपरतव कहते परती को, जो संस्कृत में हिंदी में परती शब्द है, वर्षा नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, फिर भी पुष्प खिले थे चंपक आदि के, तो उनको विक्षम देखकर, साक्षात देख करके कि श्री कृष्ण इमाम लीलाम कृतवान, श्री कृष्ण यहाँ यह लीला किए, कृष्ण यहाँ यह लीला किए, ब्रजवासी दिखा रहे थे इनको यहाँ ये किए यहाँ ये किए, तो ब्रजोक्षाम कृष्णम संस्मारयन, ब्रजवासियों को कृष्ण का संस्मरण करा रहे थे, मतलब कृष्ण कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों से उद्धव जी ये बता रहे थे, और ब्रजवासी कृष्ण ब्रजवासी ये गा रहे थे कृष्ण क्या क्या लीला कहाँ किए, तो संस्मार ब्रजवासियों को स्मरण दिलाने के लिए जमुना जी के कछार पर गिरिराज जी में इधर उधर घूमते थे वृंदावन में, तो उनको तो सुखी करते ही थे, स्वयं सुखी होते थे, उन लीला स्थानों पर वे लीलाएं प्रस्फुरित होती थी और उद्धव जी गाते थे, इससे सब लोग सुखी हैं। तो भगवान के विरह में भगवान की लीलाएं ही सुख देती हैं।
ब्रज घर घर यह बात चलावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, जसुमति को सुत करत अचगनी, जसुमति को सुत करत अचगनी, जमुना जल को भरन न पावत, जमुना जल को भरन न पावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, ब्रज घर घर यह बात चलावत, श्याम बरन नटवर बपुकाछ, मुरली राग मलार बजावत, श्याम बरन नटवर बपुकाछ, मुरली राग मलार बजावत कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति मुकुट इंद्र धन हुत भावत कुंडल छवि रवि किरण हुत दुति मुकुट इंद्र धन हुत भावत ब्रज घर घर यह बात चलावत मानत काहू न करत चगरी गागर धरी जल भी ढरकावत मानत काहू न करत चगरी गागर धरी जल भी ढरकावत सूर श्याम को मात पिता दो ऐसे ढंग अपने ही पढ़ावत ब्रज घर घर यह बात चलावत।
गोपिया कहती हैं कि श्याम सुंदर के माता पिता लगता है श्याम सुंदर को ऐसा करने को सिखाते हैं।
ब्रज घर घर यह बात चलावत जसुमति को सुत करत चगरी जसुमति को सुत करत चगरी जमुना जल को भरनन पावत ब्रज घर घर यह बात चलावत।
एक सखी घर से निकली उज पहिरत रंग गुलाब की सारी
Hey! जी के पदों का गान महाराज श्री के मुख से सुनकर मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि ठाकुर जी की अजीब सी झांकी है जो मुंह से कही नहीं जा सकती, तो तूफान मारने लगा मेरे हृदय में, मैं क्या छिपाऊं आप सबों से। जसुदा पाल मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती मन कर देखते रहती मन कर देखते मन कर देखते रहती सगरे बदनिया बाया जो मन कर देखते रहती पग पाए जनिया सहे श्याम श्याम पग पाए जनिया सहे कमर कर धानिया पग पाए सावरी बदानिया बा पीताम्बर ओढ़ानिया रूप से उठे लाहे लो मन कर देखते रहते
करे देखाते रहते रूप सिंधु मुझे लाही लो रूप सिंधु उठ लाही लो जसुदा के खाते रहती सगरे बदलिया बाया जो मन कर देखाते रहती करे देखाते रहते गाल बान माला सभे हाथ में मुरलिया हाथ बान माला गाल बान माला हाथे मुरली रसाला मुरली रसाला मुरली रसाला गाल बान माला हाथे करे देखाते रहते सगरे बदलिया बाया जो रमन कर देखाते रहते सगरे बदलिया बाया जो मन कर देखाते रहते काले घुंघराले बाल बलबाल काले घुंघराले बाल संग घिर बाल बाल काले घुंघराले रहते ध्यान कर देखा तेरा हाते सगरे बदलिया बाया जो मन कर देखा तेरा हाते
बन तो बन में आवत बल मान बल मोहन बनते बने आवत बल मान बल आवत मोहन लाल हे सखी आवत मोहन लाल हे सखी आवत मोहन लाल हे सखी आवत मोहन लाल सिका भुलान चिबुक चित भुलान सूर के प्रभु निगम वानी सूर के प्रभु सूर के प्रभु निगम वानी कौन भांति बखान कौन भांति बखान हे सखी आवत मोहन लाल हे सखी आवत मोहन लाल हे सखी आवत मोहन लाल श्याम श्याम शुभ घन पड़ी तो बसन बग श्याम शुभ पंगति मुक्ता माल ये सखी पंगति मुक्तामा ये सखी आवत मोहन लाल ये सखी आवत मोहन लाल ये सखी आवत मोहन लाल जो पद रज मुख पर छवि लागती गोर गोपद रज मुख पर छवि लागती गोपद रज मुख पर छवि कुंडल नयन विशाल लीने गैया ग्वाल
दृष्टैव मादि गोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धवः परम प्रीतस्तानमस्य निदं जगौ। एवं यद्यपि सर्वेषामेव ब्रजवासीनां श्री कृष्णे सर्व विलक्षण प्रेमा, तथापि श्री गोपीषु परम चमत्कारमयी भक्ति जाता इति दर्शयति। यद्यपि समस्त ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति सर्व विलक्षण प्रेम है, मतलब समस्त जगत से उत्कृष्ट प्रेम है, फिर भी श्री गोपियों में परम चमत्कारमयी भक्ति थी इसको दर्शा रहे हैं। उन समस्त ब्रजवासियों में गोपियां श्रेष्ठ हैं। उद्धवः गोपी नाम एवं आदि, इस प्रकार के और भी, एवं मतलब जो मैं कहा वह जिसमें आदि है, प्रारंभ है या कारण है, जो भी एवं उक्त प्रकार आदिर जस्य तत्। अभी तो जिस विलाप का या चित्र विचित्र जल्प आदि का जो मैं वर्णन किया आप लोग, ये प्रकाशित हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उद्धव के सामने प्रकाशित हुआ, वो तो आदि है, वो तो शुरुआत है, इस प्रकार की और भी कृष्णा वेशात्म विक्लवा कि वह आदि गोपीणाम ब्रज सुंदरीणाम, ये आदि गोपीणा मतलब नित्य गोपीणाम, ये भाव आदि को यहां से जोड़ेंगे, आदि गोपी मतलब नित्य गोपी, नित्य प्रियाणाम ब्रज सुंदरीणाम जदवा एवं आदि चरितम इति शेष अथवा एवं आदि कृष्णा वेशात्मिक विक्लवा, इस प्रकार की जिसमें शुरुआत थी ऐसे कृष्णा वेशेन आत्मनः विक्लवा दिव्यन मादादि जत्र तत् अननुभूतम्, इस प्रकार से कृष्ण में आवेशित मन की जो विकलता थी इसको उन्होंने देखा, जो पहले अनुभूत नहीं था इसको देख करके साक्षात अनुभव करके परम प्रीत उद्धव परम प्रसन्न हुए, परम सुखी हुए। परम शब्द पराकाष्ठा को बता रहा है, अति 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 सुख मिला उद्धव जी को यह देख करके, और ताह नमस्यन अभी गोपियों को प्रणाम करना चालू किए, नमस्यन गोपीजनों को बारंबार प्रणाम करके और इस प्रकार से कहने लगे। देखिए उद्धव का परिवर्तन, आए थे संदेश देने के लिए अब सीख गए, इदम जगौ बक्षमाणम जगौ उच्च सुस्वरम कृत्यामास, जगौ का अर्थ धीरे धीरे नहीं बोले, उच्च स्वर से गोपियों की महिमा बोलने लगे। गोपी नमस्यन नमस्करिष्यन उत्तमस्य क्षत्रिय जातोरपि आत्मनो गोपा स्त्री नमस्कृति अन्याय अनुचिता न भवति दर्शिता सम महत्वम पंचभी जगम। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं और जी क्षत्रिय जाति के हैं और गोपियां वैश्य जाति की हैं, तो इतना बड़ा व्यक्ति होकर के और वह भी स्त्रियों को प्रणाम करने लगा, क्या ये अनुचित नहीं है? तो उद्धव जी कह रहे हैं अनुचित नहीं है, यही उचित है। इसको बताने के लिए गोपियों की महिमा पांच श्लोकों में गाए हैं। आगे एताहा परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एवमखिलात्मनिरूढभावः वांछन्ति यद्भवभिवो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। ननु भवद्भि क्षत्रिय तनुभि ब्राह्मण तन्म एव नमस्य, क्षत्रियों के द्वारा तो ब्राह्मण नमस्य होते हैं, जैसा आगे उद्धव जी ने कहा है कि क्रेमा स्त्रियों बनचरी इत्यादि, तो उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? इसलिए गोपियों की महिमा गा, क्यों नमस्य हैं, क्यों महान हैं? वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम में जितना ही पगा हुआ है वो उतना ही महान है, महानता का ये मापदंड है। जाति वर्ग विद्या ये सब महानता का माप नहीं है, जो कृष्ण का जितना ही बड़ा भक्त है वो प्रणाम में। तो कहते हैं हम अनुभवैक वेद्येन, इस प्रकार अनिवचनीय प्रकारेण एक अद्भुत भाव से जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती है और जिसे मैं आज तक कभी सोचा भी नहीं था सुना नहीं था, अति लालसार्थी विकार भंग्यादिना, अति लालसा मैं प्रेम में विकार भंगी से जगत को चमत्कृत करने वाले भाव विशेष के द्वारा अखिलात्मनि गोविंदे रूढ़ भावा, अखिलात्मनि सर्वांशनी सर्वांतर जामिनी परमेश्वर है श्री कृष्ण गोविंदे गोविंद में इस प्रकार के रूढ़ भाव वाली एता ये गोपियां गोपबद्ध वह भुवि तनुभृत परम तनुभृत केवलम तनुभृत, इस जगत में अगर कहा जाएगा कि किसी ने शरीर धारण किया है अर्थात सफल जन्म कौन है, तो गोपियां हैं सफल जन्म। शरीर धारण करने कर परम किसने शरीर धारण किया है इस पृथ्वी पर, केवल गोपियों ने, बाकी सब शरीर धारण नहीं कर रहे हैं, शरीर में आत्मा है ही नहीं, सब मरे हुए हैं, ये अर्थ है। अर्थात शरीर धारण करना सफल केवल गोपियों का है इस संसार में, इस पृथ्वी पर। यह अद्भुत वाक्य कह रहे हैं। अब तो समय बहुत कम है हम लोगों के पास, अब व्याख्या बहुत नहीं हो पाएगी, लेकिन विचार करना चाहिए वैष्णवों को। एवं रूढ़ भावा, एवं रूढ़ भावा का अर्थ है कि अनुभविक वेद्यन अनिर्वचनीय प्रकारेण, इन्होंने गोविंद में भाव अर्जित किया है। कैसा भाव? रूढ़ भाव, जात प्रेम विशेष, जम करके प्रेम उत्पन्न हुआ है गोपियों में। और एवं इस प्रकार का मतलब ऐसा जिसकी तुलना कहीं नहीं। जैसा मैं देखा न सुना, मैं स्वर्ग गया बृहस्पति जिसे पढ़ा, लेकिन इसकी गंध का भी पता कहीं नहीं था, किसी ने कभी वाणी से भी इसको नहीं कहा। और तो और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन वे भी इस तरह की बात नहीं कहे, और ये कहने से नहीं समझ में आएगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि ये देख करके तब समझ में आया है, वर्णन से नहीं समझ में आता है। इस प्रकार का भाव, रूढ़ भाव, रूढ़ भाव कि भगवान ने विरह दिया, छोड़कर चले गए, फिर भी ये भाव कटा नहीं, हटा नहीं, दृढ़ और परम आत्मीयता में भाव, किसमें? गोविंद में। परम रूप गुण सीमता विख्यात श्री गोकुलेंद्र तया प्रकाश माने, गोविंद में जो इंद्रियों के लिए परम प्रिय हैं, वृंदावन में रहते हैं विख्यात जो गोकुलेंद्र के रूप में, उनमें ऐसा रूढ़ भाव एता। और फिर दिखा दिखा कर कह रहे उसे, ये गोपियां एता गोप बद्धव गोप्य श्री भगवत प्रयस्य भुवि संप्रति भगवत अवतार सहभाव संपन्न तद भक्ति साधक सिद्ध नित्य सिद्धालंकृतायम पृथ्वी तले। इस समय जब पृथ्वी सबसे अधिक सौभाग्यशाली हुई है भगवान के चरण का स्पर्श पा करके, एक तो जितने भी लोग हैं उनमें सबसे भाग्यवती यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग्यवती गोपी है। तो भाग्य क्या है? श्री कृष्ण के चरण में प्रेम अर्जित करना है। जिसने जितना ही प्रेम बढ़ाया है उतना ही महान है, उतना ही भाग्यवान है। तो इस पृथ्वी तल पर, भूमि पर परम तनुभृत गोपियों ने ही केवल शरीर धारण किया है, अर्थात गोपियों का शरीर ही सबसे श्रेष्ठ है। सफल जन्मान इत्यर्थ, सफल जन्मा। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि गोविंद में भाव का विकास ही मनुष्य शरीर की सफलता है, प्रेम करना ही सफलता है। जत यम भावम किंवश जस्मत कारणात, जिस भाव को अथवा जिस कारण से भव भी मुनय वांछन्ति, मुमुक्षु जो संसार बंधन से छूटना चाहते हैं और जो मुक्त हो गए हैं, शुभ आश्रय के जो मननशील है, अपने मन में बहुत सुंदर शुभ विषय सोचते रहते हैं, उनको मुनि कहते हैं। ये मुनि गण भी वांछन्ति, चाहते हैं क्या उस भाव को? नहीं, इतना कहां भी सोच सकते हैं उस भाव को प्राप्त करने का। यत का अर्थ है जस्मात कारणात, इस कारण से भव भी मुनय वांछन्ति वयम च हम भी चाहते हैं। हम कृष्ण के नित्य भक्त हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा जानते भी नहीं थे। ऐसे गोविंद को लेकर के यहां जत शब्द का प्रयोग भी हो सकता है कि जिस गोविंद को हम लोग चाहते हैं, इस भाव की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। उस गोविंद में इनका ऐसा भाव है, प्रेम है। अथवा ये आपात अर्थ यह लगता है कि गोपियों का जो भाव है उसको भव भीय मुनय वांछन्ति, लेकिन भव भीय मुनय क्यों चाहेंगे उसको? भव भीय जन्म मरण से डरे हुए ऋषि लोग गोपी भाव को चाहें, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं कि परम तनु भृत पर ये चाहते हैं भव भीय मुनि लोग, मुमुक्षु लोग, मुनि जन, कि हमारा जन्म भी सफल हो, देख करके सीखते हैं। गोपी भाव को पाने की कल्पना इनमें कहां से हो सकती है? तो जिस जन्म की सफलता को ऋषि जन चाहते हैं, मुनि जन, और हम वयम च, हम भगवान के पार्षद गण भक्त गण भी चाहते हैं, उस भाव को इन्होंने प्राप्त किया है। अथवा नीचे से संबंध है, भगवान के कथा में हम चाहते हैं कि मन अभिनिविष्ट हो जाए। इस पर कहा जाए कि आप क्यों इतनी प्रशंसा कर रहे हैं गोपियों की, क्यों इनका जन्म धन्य है? जन्म धन्य है कि कृष्ण में भाव उत्पन्न हुआ है और अनंत के कथा में रस प्राप्त हुआ है इनको। तो जिस जो व्यक्ति अनंत कथा रस है, मतलब अनंत श्री कृष्ण की कथाओं में जिसको अब रस मिलने लगा है, रुचि अनुराग उत्पन्न हो गया है, उसके लिए ब्रह्म जन्म भी किम, ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से क्या फायदा, क्या आवश्यकता है? ब्रह्म जन्म भी किम, ये प्रणाम कर रहे हैं गोकुल की स्त्रियों को, इसलिए इनके मन में उत्साह है कि कोई ना कोई कहेगा कि अरे प्रणाम तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, आप क्षत्रिय होकर के वो भी स्त्रियों को गोपियों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तब कहते हैं अनंत कथा रसस्य, अनंतस्य गोविंदस्य कथासु रसः अनुरागः जस्य तस्य। गोविंद की कथाओं में जिसको अनुराग हो गया है उसके लिए ब्रह्म जन्म भी किम, विप्र संबंध भी सौक्र सावित्र जाग्गी कई जन्म भी किम, न कोपि प्रयोजना, न कोति सय, कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता है भगवान की कथा में रसास्वादन की, किंवा अनंतस्य परम माधुरी भी अपारस्य तस्य कथा सु अपि अरस रुचि मात्रस्य अभाव, मात्रस्य अभाव यस्य तस्य ब्रह्म जन्म भी किम। अथवा अनंत कथा रसस्य, कथा रस कथा अरसस्य, जिस व्यक्ति को अनंत की कथा में अरस है, रुचि नहीं रही, उसको ब्राह्मण में जन्म लेने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, बेकार जन्म गया। अनंत कथा अरसस्य और अनंत कथा रसस्य, तो इस जीवन की सफलता इसी में है कि श्री कृष्ण के वार्ता में मन रम जाए, बस यही यही सफलता है। चाहे ब्राह्मण में जन्म लेकर के हो, चाहे क्षत्रिय में जन्म लेकर के हो, वैश्य में, शूद्र में, किसी में, माना जाएगा कि जो कथा के रस में आविष्ट हो गया उसी का जन्म सफल है। और जिसको कृष्ण के कथा में रस मिलने लगा उसको ब्रह्मा बनने से भी क्या फायदा है, क्या जरूरत ब्रह्म जन्म में? आवश्यकता है कृष्ण के कथा में रस मिलने लगा। हम बताइए इस प्रकार के भागवत सप्ताह में आने वालों का कितना भाग्य है। यह भगवान का जो जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, रुचि हो गई है, कृष्ण कथा के बिना नहीं रह सकते, पढ़े बिना, भागवत सुने बिना नहीं रह सकते, जप के बिना, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा का जन्म भी किस तुल्य, क्या जरूरत संसार का मैनेजमेंट देखना, सृष्टि करना, क्या आवश्यकता है उसकी, बताइए। ब्रह्मा का पद भी मिले और वहां कृष्ण कथा के लिए अवकाश न हो, रस न हो, तो वे व्यर्थ है। जीवन में सबसे भारी मूल्यवान वस्तु है कृष्ण कथा में रस आना। ये भगवान के द्वितीय मूर्ति प्रतिनिधि उद्धव जी का वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य, अनंत कथा रसस्य ब्रह्म जन्म भी किम, क्या ब्रह्म जन्म करेगा, क्या वो ज्यादा हुआ, को अतिशय जत्र तत्र जातः सैव सर्वोत्तम, कहीं भी जन्म हुआ हो, किसी भी वंश में, किसी भी धर्म वाले में, यदि कृष्ण कथा में प्रीति हो गई तो वही जन्म धन्य है। किंवा अनंत कथासु रसः जस्य तस्य ब्रह्म जन्म भी चतुर्मुख जन्म भी रपि किम, क्या क्या ज्यादा लाभ हो जाएगा उसको, जब अनंत के कथा में रस आने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो फिर चतुर्मुख के रूप में जन्म लेने से क्या फायदा। जिस भक्त को भगवान के कथा में, भागवत पढ़ने सुनने में रुचि हो गई, जप आदि में, गुण गाने में, तो उसको ब्रह्मा बनने की क्या जरूरत, ब्रह्मा बनने पर इससे ज्यादा लाभ क्या होगा, कुछ नहीं। सबसे बड़ा लाभ जीवन की सफलता है कृष्ण कथा में रस की अनुभूति। और ऐसा जिसको जो पा लिया तो अब क्या आवश्यकता है, अब क्या करेगा ब्रह्मा का जन्म लेकर। या और जब ब्रह्मा का जन्म ही व्यर्थ है तो और उसके नीचे इंद्र पद और ये सब की तो बात ही क्या है। और उससे भी ज्यादा नीचे उतर कर पृथ्वी में, वो भी आकर बॉम्बे में इधर उधर छोटा छोटा पद किस काम की चीज है। जो ब्रह्मा के पद की कोई कीमत नहीं है, तो सारी व्यवस्था जो है, परिवार है, वर्णाश्रम धर्म है, सब कुछ है, ये इसी लक्ष्य के लिए है कि किसी व्यक्ति का चित भगवान के कथा के रस में डूब जाए। और ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेगी काबिलियत और वेदाध्ययन और सब। विश्व व्यवस्था मैनेजमेंट क्या करेगा, सारा मैनेजमेंट सारी व्यवस्था इसी अंत की ओर है, इसी पर्यवसान की ओर की कथा में रस मिलने लगे, यही जीवन की सार्थकता है। गोपी महात्मविद वर्जन सर्व भागवतो तमम तमुद्धवम प्रपद्य हम तद गीतार्थ विलुब्ध धी। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के महात्म को जानने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं और समस्त भागवतों में जो उत्तम हैं, ऐसे उद्धव जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं उनके गीत के अर्थ को जानने की लालसा से। विलुब्ध धी, बहुत लोभ हो रहा है उनके गीत के अर्थ को पकड़ने के लिए, केवल शाब्दिक अर्थ जानने के लिए नहीं। यहां अर्थ का अर्थ होता है उस वस्तु का सार। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ वो अन्वय करके और संस्कृत का अर्थ समझना चाहता हूं। तद गीतार्थ विलुब्ध धी, उनके गीत का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन है गोपियों के चरण रज को पाने के लिए वृंदावन में किसी लता पता के रूप में जन्म लेना, ये लाभ है। देखो एक जदुवंशी हैं, भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हे विधाता, हे श्री कृष्ण, यदि आप हमको वृंदावन की कोई लता पता बना देते और उस पर गोपियों की चरण रज पड़ती, तब मैं मानता कि मेरा जीवन धन्य हुआ। इस प्रकार की बात कहेंगे तो श्रीपद सनातन गोस्वामी उसी रस के लिए विलुब्ध है। गीत का वह अर्थ है उसके प्रति विलुब्ध। एवं मुमुक्षु मुक्त भक्तेभ्यो अधिक महात्म्यम उक्तम। ये अपने आप सिद्ध हुआ कि जितने भी मुमुक्षु हैं, संसार बंधन से छूटना चाहते हैं या मुक्त हैं अथवा भक्त हो गए हैं, उन सबसे बड़ी महिमा गोपियों की है, ईदृशम एव जन्म सर्वोत्तमम न तु जगत सृष्टित्वादिना। जगत की सृष्टि करने आदि के द्वारा जन्म सफल नहीं होता है, जन्म सफल होता है गोपियों की तरह कृष्ण कथा में रमने से। उनका तो जीवन कृष्ण कथा है, जब से आप सुन रहे हैं गोपियों की भेंट, जब से उद्धव से हुई तब से वो बोलती ही रहती है। और उन्हीं की बोली गई कुछ बातों को हम लोग तो गाते रहते हैं। गोपियां तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या। कोई भी व्यक्ति यदि उसको कृष्ण कथा में रस आने लगा तो ब्रह्मा जी के जन्म से उसका श्रेष्ठ जन्म है। यदि ब्रह्मा जी स्वयं ही अनंत कथा रस हैं, ऐसे हीन भावना नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्मा जी कृष्ण कथा के मर्मज्ञ नहीं, वो तो आचार्य हैं, हम लोगों की परंपरा तो उन्हीं से आती है। लेकिन केवल विश्व व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, उनके पावर पद आदि को देखा जाए, तो वह कृष्ण कथा के रसिक जन्म के आगे फीका है। बहुत्वम गौरवेण किम ब्रह्म जन्म भी बहुवचन में, बहुत्वम गौरवेण किम वा बाहुल्यापेक्षा श्री भगवत कथा रसेन श्री ब्रह्मादि जन्मतोपि अधिक फल सिद्ध। क्योंकि वो एक वचन में है अनंत कथा रसस्य, और ये है ब्रह्म जन्म भी बहुवचन में, इसके ये भाव है। कई बार भी ब्रह्मा बने तो क्या, कई बार श्रेष्ठ जन्म लिया, नेता बना, अध्यक्ष बना, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना। तो एक जन्म में भले वो निकृष्ट जन्म हो, बिना पढ़े लिखे घर में जन्म हुआ हो, या हीन परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिया हो, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन कृष्ण के नाम जप में जिसका अनुराग है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो श्रेष्ठ है। हाँ जी, तो निरंतर कृष्ण कथा में रहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रभाव है, उपाद ऐसा है कि उसमें तो रात दिन देखना मिलाना, पृथ्वी का भार बढ़ गया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को समझाना है, देवताओं को भेजना है, भगवान को बुलाना है, केवल व्यवस्था देखने के लिए, तो इसलिए श्रेष्ठ कह रहे हैं। अथवा लोक में प्रचार है कि जो ब्राह्मण में जन्म लिए हैं उनका जन्म बड़ा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सबसे अच्छा जन्म उसका है जो कृष्ण का भक्त है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुबीरा। अथवा अखिल अखिलस्य आत्मनि प्रियतमे इत्यर्थ, कृष्ण तो सबके आत्मा है, प्रियतम है, तथापि ईदृशो भाव अस्मिन् कस्य अपि अन्यस्य, इस प्रकार का भाव कहाँ देखा गया। कृष्ण तो है प्रियतम समस्त जीवों के, शास्त्र के द्वारा सिद्ध है, लेकिन कौन इतना प्यार किया है। तो अथवा ब्रह्म जन्म भी ब्रह्माकार मनोवृत्त भी रपि किम, ब्रह्म जन्म एक तरफ कृष्ण कथा का रसिक और दूसरे तरफ ब्रह्माकार वृत्ति वाला, उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है। कथा ही सुननी चाहिए, कथा ही पढ़नी चाहिए, गीत ही गाना चाहिए, ध्यान नहीं, निराकार का और इसका बहुत्वम गौर व्यंजन समग्रता अपेक्षा वा जद्वा ईदृश्य भावा भावे न ब्रह्म जन्मना अपि न किमपि, इस प्रकार के भाव के अभाव से ब्रह्मा का जन्म भी बेकार। इस प्रकार का भाव ब्रह्मा में नहीं है तो ब्रह्मा का जन्म बेकार है। अकार प्रश्लेषण अनंत कसाया कथाया न रसो, या रस के पहले अकार रख दिया जाए, अरस अनंत कथायाम, कृष्ण की कथा में न रसो जस्य तस्य तद रसे नैव ब्रह्म जन्मनाम अपि साफल्य सिद्ध। असम च कथादि साध्य भाव विशेष संपत्तिया दर्शक सर्वतः श्रेष्ठम युक्तम इति भाव, तो साधारण भक्तों के लिए बात कही जा रही है कि कृष्ण कथा में जिसकी रुचि हो गई उसी का जन्म सफल है, फिर इस प्रकार का भाव जिन्होंने अर्जित किया है कृष्ण के चरणों में, उनके जीवन की सफलता के विषय में क्या कहा जाए। वास्तव में केवल जन्म धारण किया है इस पृथ्वी पर तो गोपियों ने, इनके अलावा और किसी का जन्म सार्थक नहीं। अहो मम अयोग्यस्यापि आभिसंगम केवलम श्री भगवत कृपाया विशेषेण एव संसिद्ध। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, अहो मैं अयोग्य हूँ, मैं भी एक मंत्री हूँ, एक राजनेता हूँ, मैं भी यहाँ चढ़ाई करो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, राजनीति में रहता हूँ, मैं बिल्कुल अयोग्य था, लेकिन फिर भी इन महाभाग्यवती गोपियों का जो संग मुझे मिला है उसमें केवल कृष्ण कृपा कारण है। तो इसी से भगवान की कृपा की याद कर रहे हैं। कृष्ण की कृपा कब किस पर हो जाएगी कोई ठीक नहीं, भगवान की कृपा योग्य अयोग्य का विचार नहीं करती। फिर तो गोपियों पर कृपा और अपने पर भी कृपा देख रहे हैं। क्वेमा स्त्रियो इमा वनचरी ही, ये जिनकी महिमा का मैं वर्णन किया उनकी, अतः ईश्वर का जो प्रसाद है, भगवान की जो कृपा है, वो ऊंच नीच नहीं देखती है, आचार ज्ञान आदि नहीं देखती है, केवल भजन देखती है। कोई व्यक्ति जप कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, बस भगवान ये देखते, ये नहीं देखते किस जाति का आदमी कीर्तन गा रहा है। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, किंच ईश्वर प्रसादो महत्व कारणम तस्य च न जातिराचारो ज्ञानम व कारणम किंतु केवलम भजनम एव। केवल प्रेम भजन ही कारण है भगवान की कृपा में, और जाति आचार या बहुत पढ़ाई लिखाई ये सब काम नहीं करती ज्ञान। नहीं तो विचार कीजिए, यह जो महाभाव उत्पन्न हुआ है किसमें हुआ है? लक्ष्मी में नहीं हुआ है, इंद्र की पत्नी में नहीं हुआ है, पार्वती जी में नहीं हुआ है, कैसी स्त्रियों में हुआ है? वनचरी जिनका घर भी नहीं है, शिक्षा आदि के तो बात बहुत दूर है, वनवासिनी है, वृंदावन में रहने वाली वनचरी स्त्रिया, वनचर अथवा अवनचरी, अकार होता है विष्णु विष्णु, स्त्रियों अवनचरी विष्णु की स्त्रियां, अकार होता है विष्णु, सभी शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो अवनचरी अवनचरी ही अस्य विष्णु बने वृंदा बने चरंती इति तत्सह प्रेमणा परिभ्रमंती इति अर्थ। अवनचरी श्री कृष्ण के वन में जो विचरण करती है चरण करती है वो है अवनचरी अथवा वनचरी, ऐसे डायरेक्ट अर्थ लीजिए वनचरी। कहां है वन में घूमने वाली गोपियां और स्त्री और को मा दृशा व्यभिचार दुष्टा, और कहां हमारे जैसे व्यभिचार से दुष्ट लोग, हमारा कृष्ण में हमारे जैसे लोग जो लोग हैं कृष्ण में उनका स्थाई प्रेम नहीं है, कभी न कभी मन इधर उधर होता रहता है। ये श्रीपद जीव गोस्वामी जी ने अर्थ किया है, आपात अर्थ देखने में दूसरा लगता है लेकिन बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक व्याकरण के सूत्र के द्वारा सिद्ध किया है। हरे कृष्ण जय राज
महाराज की।
तो कहां ये वनचरी गोपियां, मतलब ये अर्थ जब अप्रश्लेष करके अर्थ करेंगे तब होगा, कहां भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में विहार करने वाली ये गोपियां और कहां हम। लेकिन यह कृपा यह संजोग कैसे हुआ? भगवान कृष्ण की कृपा से। मैं बहुत नीच हूं, चाहे हमारे जैसे और लोग भी व्यभिचार दुष्ट हैं। व्यभिचार का क्या अर्थ होता है? व्यभिचार का अर्थ होता है विचार में परिवर्तन। जैसे चार शब्द है ना, जैसे विचार उपचार ऐसे शब्द हैं, तो वी और अभी और चार, वी अभिचार, और अभिचार कहेगा तो अभिचार का अर्थ होगा कि किसी को मारना, उच्चाटन अभिचारण ऐसा कुछ है ना उसमें, और वी का अर्थ उल्टा, विशेष रूप से जो एक सिद्धांत में न रह करके आज इसको मान रहे कल उसको मानने लगे, कल ये मान रहे कल वो माना है, तो इसको व्यभिचार कहते शास्त्र में। ऐसे लोक में व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है कोई पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री से संग करते उसको व्यभिचार कहते हैं, या स्त्री किसी पर पुरुष से संग करे तो उसको व्यभिचार कहते हैं, लेकिन ये बहुत सीमित अर्थ है। एक मान लिया गया है कि ये इस शब्द का ही अर्थ होता है, लेकिन व्यभिचार का अर्थ होता है विचारों का बदलना, लेकिन व्यभिचार का अर्थ होता है विचारों का बदलना, चार का बदलना, चार का अर्थ होता है आचरण, ये थॉट मन का, तो विचारों का बदलना। तो कहां वृंदावन में अस्थाई रहने वाली भगवान श्री कृष्ण की ये प्रियाएं और कहां व्यभिचार दुष्ट हम लोग। व्यभिचार सत्कर्मणी अन्यथात्वं परांगमुखता तेन दुष्टा, व्यभिचार का अर्थ है सत्कर्म में अन्यथात्वम परांगमुखता, जो सत्कर्म है जो हमारा कर्तव्य है या सज्जनों का कर्तव्य है उससे मन का फिर जाना, इसको व्यभिचार कहते हैं। तो सत्कर्म क्या है इस जगत में? सत्कर्म है केवल कृष्ण से प्रेम करना, यही सत्कर्म है। तो हम लोग कभी कभी विमुख हो जाते हैं, ऐति अपने दैन से कह रहे हैं, उद्धव जी विमुख नहीं है, लेकिन तथा कथित भक्त लोग ऐसे होते हैं, कुछ मन इधर उधर होता रहता है। जदवा पूर्व पद्य स्थस्य वयम इत्यस्य उत्कृष्टया व्यभिचार दुष्टा वयम च, तो कहां क्व मतलब कहां ये वृंदावन में भगवान के धाम में विहार करने वाली स्त्रियां कृष्ण प्रेम से पूरित, और कहां हम आज यहां हैं तो कल वहां चले जाते हैं, कल ये विचार है तो कल वो विचार है। परम क्व क्व यहां वाक्य पूरा हुआ, परम विस्मित सन सरोमांचम साभिनय माह, फिर रोमांच हो गया शरीर में कृष्ण की कृपा का स्मरण करके, तो अभिनय करते हुए मतलब अपने भाग्य को बताते हुए हाथों से कहते हैं, परमात्मनि कृष्ण एवं रुद्ध भाव स्यात्। कहां गोपियां और कहां हम, क्या कृष्ण में ऐसा रूढ़ भाव हम लोगों में हो सकता है? नहीं, कभी संभव नहीं। रूढ़ भाव, रूढ़ भावा के बदले रूढ़ भाव पाठ बांचा जाएगा। क्या ऐसा प्रेम हम लोगों में संभव है? कदापि नहीं। न तु अस्मासु तल लेसो अपि इत्यर्थ, न च आशा में व तस्मिन तादृश सौहृदम, न तो तस्यासु इति वाचम तस् परमेश्वरस्य परम सुहृदताया असाधारणेष्वपि दृश्यन्ते। वास्तव में भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है उसी के भीतर भगवान का प्रेम उत्पन्न होता है। तो मुझे तो गोपियों के दर्शन का सौभाग्य जो मिला है कृष्ण की कृपा है, और गोपियों में जो भाव है वो कृष्ण की कृपा है। तो भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं, या भगवान की कृपा ऐसी वस्तु है कि केवल भजन किया जाए, उनसे संपर्क जोड़ा जाए, तो संसर्ग मात्र से भगवान अपने गुण से सद्गुण से उस व्यक्ति को कृतार्थ कर देते हैं। जैसे उपयुक्त केवल सेवित होने पर सूंघने मात्र से या पीने मात्र से अगद राजा औषध श्रेष्ठ अमृतम आरोग्य जैसे देता है, वैसे ईश्वर अनुभजतः अविदुषः साक्षात श्रेय तनोति ननु निश्चितम। परम स्वतंत्र भगवान है, ईश्वर है, परम दयालु है, अनुभजतः जो उनके भजन का केवल अनुकरण भी करता है और अविदुषः भगवान की महिमा को नहीं भी जानता है, तो उसको भी भगवान श्रेय तनोति प्रेम देते हैं, अपना कल्याण करते हैं। अनुभजता का अर्थ है अनुकरण कर रहा है भजन का, रियल भजन नहीं कर रहा है, दूसरे लोग करते हैं तो वो भी जप करता है, दूसरे लोग कृष्ण का भक्त बन गए हैं तो वो भी बन गया है। बेचारा जान करके कृष्ण का तत्व जान करके भक्ति का सिद्धांत जान करके भक्ति रसा में सिंधु पढ़ करके नहीं हुआ, ये देखा देखी हो गया, इसको अनुभजन कहते हैं यहां पर, अथवा निरंतर भजन। तो केवल भजन का अनुकरण भी कोई करता है और भगवान के तत्व को नहीं जानता है, भजन के प्रभाव को नहीं जानता है, फिर भी उसका साक्षात प्रत्यक्ष श्रेय होता है, भगवान देते हैं श्रेय तनोति विस्तरेण करोति। तो आज मुझ पर जो कृपा हुई है इसका कारण यही है कि मैंने कृष्ण की एक सेवा की है, क्योंकि मैं उनकी महिमा नहीं जानता हूँ, अपने में दैन्य पूर्वक कह रहा है, परंतु फिर भी मैं उनके पास रहा हूँ, उनकी सेवा किया हूँ, इसीलिए आज मुझे यह परम श्रेय प्राप्त हुआ है, गोपियों का दर्शन हुआ है। हरे कृष्ण।
नायं श्रियोंगवु नितांतरते प्रसादः स्वर्जोषिता नलिन गंधरुचो कुतोन्यः रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशां यौदगाद् ब्रजसुंदरीणां। अत्यंत अपूर्वं चायं गोपिषु भगवत प्रसादैत्या। गोपियों पर भगवान श्री कृष्ण का अपूर्व प्रसाद है। अपूर्व प्रसाद का अर्थ है ऐसा प्रसाद, ऐसा अनुग्रह भगवान ने पहले और किसी के प्रति नहीं किया है। अहो हरि प्रिया इति प्रसिद्धा महालक्ष्मी रपि एतादृश प्रेमाश्रयो नस्य आदित्या। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम गोपी जनों का है वो महालक्ष्मी का भी नहीं है। यद्यपि पर व्योमाधिपति भगवान नारकृष्ण में कोई भेद नहीं है, फिर भी उनकी सदा बक्षा विलासिनी लक्ष्मी जी जो सर्वशक्ति शिरोमणि है इस भाव को नहीं पा सकी जो गोपियों में है। इस बात को उद्धव जी कहते हैं, नायम श्रियोंग नितांतरते प्रसाद रासोत्सवे रास उत्सव में अस्य श्रीकृष्णस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशः। रास जब चल रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से गोपियों के कंठ को पकड़े से आलिंगन गलवाही दिए थे और हाथ में हाथ मिलाकर नाच रहे थे। तो इस प्रकार का सुख है, इस प्रकार के मनोरथ की पूर्ति जो ब्रज सुंदरियों को मिला, ब्रज सुंदरी नाम यह उद्गात, जो प्रसाद उद्गात प्रकट हुआ रास उत्सव में गोपियों के कंठ को जिन्होंने भगवान ने पकड़ा था, तो इस प्रकार उन लोगों को जो प्रसाद दिया भगवान ने, उनका अनुग्रह किया, अर्थात उस समय जो भगवान की कृपा प्रकट हुई, प्रसाद से संबंध है, यह उद्गात यह प्रसाद प्रकटो अभूत अयम प्रसाद अंगे नितांत रते है श्रिय अपि न। यह प्रसाद यह कृपा भगवान के अंग पर रहने वाली लक्ष्मी को ही प्राप्त नहीं जो गोपियों को प्राप्त है, जो कि नितांत रत है। नितांता गाढ़ा चासव रतिश्चेति नितांत रति। लक्ष्मी जी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति अति है, ऐसी प्रेम युक्ता है लक्ष्मी जी, फिर भी उनको यह प्रसाद नहीं मिला जो गोपियों को मिला, न विद्यते। तो उद्धव जी को सब कुछ मालूम है और रासोत्सवे एक लीला की याद कर रहे हैं। वैसे तो नित्य ही गोपियों को यह प्रसाद प्राप्त है किसी भी लीला में। रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशः ब्रज सुंदरी नाम यह प्रसाद उद्गात, जो प्रकट हुआ प्रसाद अयम प्रसाद अंगे नितांत रते श्रिय अपि न विद्यते। फिर नलिन गंध रुचाम स्वर जोशिताम न विद्यते इति किम वक्तव्यम। और नलिन के समान दिव्य स्वर्ण कमल जैसा गंध जिनके शरीर में है और कांति भी है, ऐसी स्वर्ग की स्त्रियों को अप्सराओं को भगवान का यह प्रसाद न मिला, इसमें तो कहना ही क्या। और अन्या तो कुतः, फिर मनुष्य की स्त्रियों को तो कहना ही क्या। इतर स्त्रिय कुतः अन्य कुतः कुतः प्रसाद विषय इति शेषक, कहां से प्रसाद का विषय हो सकती है। गोपियां स्त्री हैं, स्त्रियों के साथ भगवान का जो यह अनुराग व्यक्त हुआ है, यहां प्रसाद का अर्थ है भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा, जो कृष्ण प्रसाद, जो कृष्ण की प्रसन्नता, उनका प्रेम गोपियों के प्रति प्रकट हुआ रास विहार में, यह प्रसाद लक्ष्मी को सुलभ नहीं है, फिर स्वर्ग की अप्सराओं को कहां से सुलभ होगा, उसमें भी मनुष्य की स्त्रियों को कहां से सुलभ होगा, किसी को नहीं सुलभ। जब लक्ष्मी को ही नहीं मिला तो और किसको मिलेगा। तो ये गोपियां स्त्रियां, इसलिए स्त्रियों के सौभाग्य की बात याद कर रहे हैं उद्धव जी, मिला रहे हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं तो सबसे श्रेष्ठ श्री हैं, और श्री के बाद ही सची हैं, मतलब देवताओं की स्त्रियां मनुष्य हैं, सबसे नीच मनुष्यों की कोई कीमत नहीं है ब्रह्मांड में। लेकिन मनुष्य इतने पागल हैं कि वो कहते हैं कि देवता है ही नहीं। वाह रे वाह। जैसे मान लीजिए इस गांव के कुत्ते आपस में मीटिंग करें और कहें कि भारत में कोई सरकार नहीं, हम नहीं मानते, कुछ भी नहीं, तो उन अज्ञों के लिए क्या कहा जाए? सरकार तो है, व्यवस्थाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं है तो क्या कहा जाए? मनुष्यों की अपेक्षा देवता बहुत श्रेष्ठ, और सारी व्यवस्था है विश्व की। आप देखते हैं ये प्रकाश जो आ रहा है, किसी सरकार की व्यवस्था तो है नहीं, ये ऊपर वाली सरकार की व्यवस्था है। एक सूर्य के द्वारा प्रकाश दिया जा रहा है, जो हवा बह रही है यह भी देवताओं के प्रशासन से है, देवताओं की व्यवस्था से है। ये पृथ्वी जो हम लोग बैठे हैं जिस पृथ्वी पर, पृथ्वी कोई ले करके नहीं आया, हम सब लोग खाली हाथ आए थे, ये किसकी व्यवस्था है? देवताओं की व्यवस्था है, वेद दिए, पानी प्रकाश हवा सब कुछ दे रहे, परंतु मनुष्यों को आज के युग में इन देवताओं का कोई ज्ञान नहीं है। बिल्कुल अज्ञ पशु जैसे लोग हो गए, कोई ज्ञान नहीं है। सामने देखते हैं बहुत बड़ी व्यवस्था है, वर्षा होती है, वर्षा तो देवता ही करते हैं, हम तो कर नहीं सकते, उन्हीं का बरसाया हुआ पानी नदियों से बांध बना करके खेतों में पहुंचा देते हैं तो कहते हैं हम बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। तो भगवान का पानी है, देवताओं का पानी है। सुशीला हैं, बहुत प्रकार की स्त्रियां हैं, लेकिन स्त्रियों में यदि यह देखा जाए कि भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग किनमें अधिक है और कृष्ण किनके साथ सबसे ज्यादा मिले हुए हैं, सबसे अधिक अनुराग कृष्ण का, सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसके प्रति व्यक्त किए हैं? गोपियों के प्रति, ऐसा अन्य किसी को नहीं माने। इसलिए उद्गात, उद्गात का अर्थ उदय हुआ, भगवान का जो प्रसाद जो उदय हुआ गोपियों के प्रति, वो किसी के प्रति उदय नहीं हुआ है। यहाँ उदय होने का मतलब है कि वह श्री कृष्ण का दुर्लभ भुजा, वह कंठ, और भगवान का दुर्लभ शरीर गोपियों के शरीर से स्पर्श करके और उनको आनंद दे रहा, ऐसा वर्णन है रासलीला में। हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान नाचते नाचते गोपियों के मुख से चबाया हुआ पान अपने मुख में ले लेते हैं। इतना निकट का संबंध, वह वेद दुर्लभ सच्चिदानंद घन शरीर का स्पर्श जिन गोपियों को मिला, और इतना ही नहीं, गोपियां जिन्हें अपना मानती हैं, अपना पूर्ण अधिकार मानते हैं, कृष्ण मेरे हैं, तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सब कुछ दिया है, आत्म अर्पित किया भगवान ने, ये सौभाग्य दिया। भगवान जब किसी जीव को सौभाग्य देते हैं तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही है जीव का कि भगवान अपने आलिंगन में लेते हैं, अपने से छाती से लगाते हैं। तो गोपियों को तो उन्होंने सब तरह से अपना माना, उनके साथ नाचे गाए खेले खाए, तो ऐसा सौभाग्य श्री को भी नहीं है और इंद्राणी को भी नहीं है, फिर यक्ष आदि उपदेवों को कहाँ से हो सकता है, फिर मनुष्य की स्त्रियों को तो कहना ही नहीं। गोप्यो लब्ध्वा च्युतम कांतम श्रिय एकांत बल्लभम गृहीत कंठ दुर्भ्याम गायन त्यस्तम विजय। सुखदेव गोसाई ने वर्णन किया है कि जो लक्ष्मीपति हैं उनको अपने कांत के रूप में पा करके और उनके कंठ को पकड़ कर, या कृष्ण इनके कंठ को पकड़े थे और ये गा करके बिहार कर रहे थे, वृंदावन में घूम रहे थे, कहाँ ऐसी कृपा। लक्ष्मी का, लक्ष्मी के साथ भगवान गलवाही दिए हों ऐसा नहीं देखा जाता है, छाती पर जगह दे दिए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ गलवाही दे करके कभी वो नृत्य किए हों वैकुंठ में, ऐसा नहीं है, नृत्य तो शायद किए ही नहीं होंगे। अकेले में भी भगवान विष्णु नृत्य नहीं किए होंगे, उनको तो सब लोग प्रणाम करते हैं, वो तो ईश्वर हैं, परमेश्वर। और भगवान श्री राम भी शायद नृत्य नहीं किए होंगे, तो बड़े गंभीर हैं, मर्यादा में हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो थिरक थिरक करके नाचते हैं कहीं भी, गोचारण के समय, इधर उधर रासलीला में, और सब यहाँ तक गोवर्धन धारण किए थे और उस समय भी वे नाच रहे थे। कभी कभी गोपों को भय होता था, अरे गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा पर्वत, तुम अपनी अपनी लाठी लगाए थे गिरने न पाए और हंस रहे थे। एक बार गोपों ने कहा, कृष्ण तुम बहुत दिन से पर्वत उठाए हो बिना खाए पिए, ऐसा करो लाला हम लोग लाठी से कुछ देर तक पर्वत को थाम लेते हैं और तुम छोड़ करके खा लो, कुछ विश्राम कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ ठीक कहते हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने हाथ नीचे किया और इनके लाठी पर गोवर्धन रुका हुआ तो वो लगा नीचे आने, तो सब लोग हा हा करने लगे हा हा, तब तक भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तो एक भक्त ने लिखा है कि भगवान की वह मुस्कुराहट, भगवान की वह मंद हंसी सब तरह से हमारा मंगल करे। ये हंसे थे कि अब तो अब सब लोग हाहाकार करने लगे तब तो गिरा पर्वत सब चूर्णी भूत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो सौभाग्य दिया है गोपियों को, और उसके बाद उपलक्षण गोप आदि के साथ जो खेले हैं नाचे हैं खाए हैं गोचारण किए हैं, तो उनका अनुराग यदि किसी जीव के प्रति हो सकता है किसी प्रेमी के प्रति, तो वह अनुराग अपनी पूर्ण अवस्था में प्रकट हुआ है गोपीजनों के प्रति। तो धन्य है स्त्रियां, संसार में समस्त स्त्रियों का मुकुटमणि ये है, इसीलिए मैं इनके चरणों की वंदना करता हूँ, यह भाव है।